ऐसी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गी जीवन रोटी आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही वो सत्य वचन है जो हमें आत्मिक सामर्थ और शांति देता है और अंधकार में भटकने से हमें बचाता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए आज के वचन को ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हमारा नमस्कार। आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम पुराने नियम से दूसरे राजाओं की पुस्तक का अध्ययन करते रहे हैं। आज हम इसके अंतिम अध्याय का अध्ययन करेंगे। अंतिम अर्थात 25वें अध्याय का मुख्य विषय है यरूशलेम की घेराबंदी। सो आइए इसी विषय के साथ हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हैं, किंतु इससे पूर्व के अपने कार्यक्रम को आरंभ करें अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगें। हम प्रार्थना करें। हे महाप्राकर्मी जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर क्षण हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। हम आपके आभारी हैं प्रभु कि आपने राजाओं की पुस्तक का अध्ययन करते समय हमारी सहायता की और नाना प्रकार से आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है। हमारी प्रार्थना है कि आप अपने वचन की रक्षा करें और हमारे सभी श्रोता भाई बहनों को आशीष दें। यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है या किसी समस्या में उलझा हुआ है, प्रभु आप उनकी सहायता करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारी सहायता करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हाँ तो मित्र, आइए दूसरे राजाओं की पुस्तक के 25वें अध्याय को आरंभ करते हैं, जिसका विषय है यरूशलेम की घेराबंदी। अध्याय 24 में हमने यहूदा की समस्या पर विचार किया था। यहूदा राज्य की समस्या थी कि वे जीवित परमेश्वर से दूर हो गए थे, वे परमेश्वर के विरोधी बन गए थे। उन्होंने परमेश्वर को पहचानना और उसके योग्य आदर और सम्मान और धन्यवाद स्तुति की भेंट चढ़ाना बंद कर दिया था। रुचिकर बात यह है कि वे फिर भी ये समझते थे कि वे तो परमेश्वर की प्रजा हैं, परमेश्वर के खास मुख्य लोग हैं और इसलिए परमेश्वर उनकी रक्षा करेंगे। 25वें अध्याय में हम यहूदा के अंतिम निर्वासन के विषय में अध्ययन करेंगे। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने 3 बार यरूशलेम पर आक्रमण किया। वह सभी राजवंशियों को, कर्मचारियों व अधिकारियों को, कलाकारों व कुशल कारीगरों को, सेना नायकों और सभी अच्छे लोगों को निर्वासन में ले गया, बंधुआई में ले गया। परंतु उसने अपने 2 आक्रमण के समय नगर को नष्ट नहीं किया, परंतु 3री बार उसने यरूशलेम नगर को नष्ट कर दिया। हमने पिछले बाइबल अध्ययन में देखा कि उसने केवल कंगालों को नगर में छोड़ दिया और अन्य सभी अच्छे लोगों को, कारीगरों को, कलाकारों को अपने साथ ले गया। हमने पिछले अध्याय में देखा कि नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह को यहूदा का राजा बनाया। वह केवल रबर की मोहर के समान था, परंतु कुछ वर्षों पश्चात सिद्धिक्या को क्रोध आया। वो तेजित हो गया और उसने नबूकदनेस्सर के विरुद्ध बगावत कर दी। और हम अब देखेंगे कि नबूकदनेस्सर अंतिम बार यरूशलेम पर आक्रमण करता है और यहूदा को नाश कर देता है। हमारा विषय है कि नबूकदनेस्सर नगर को चारों ओर से घेर लेता है। सो आइए देखें कि वो क्या करता है। दूसरा राजा उसका 25वां अध्याय 1-7 पद, प्रथम दो पदों में इस प्रकार से लिखा है, उसके राज्य काल के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन ऐसा हुआ कि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना सहित यरूशलेम पर आक्रमण करके उसे घेर लिया तथा उसके चारों ओर परकोटा बना दिया और नगर सिदकिया राजा के राज्यकाल के 11वें वर्ष तक घिरा रहा। मित्र, सही सही तिथि नगर के घेराव के महत्व को दर्शाती है। ये तिथि यरूशलेम के अंत का आरंभ है। 9वां वर्ष, 10वां महीना, 10वां दिन का अर्थ है जनवरी 15, 588 ईसा पूर्व। 11वां वर्ष, 9वां दिन, 4वां महीना, इसका अर्थ है 18 जुलाई 586 ईसा पूर्व, जैसा हम तीसरे पद में पढ़ते हैं, 4थे महीने के 9वें दिन से नगर में ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि देश की प्रजा के लिए कुछ खाने को ना रहा। मित्रवर, यर्मिया नबी की पुस्तक के 39वें अध्याय के दूसरे पद के अनुसार सिदकिया के राज्य के 11वें वर्ष के 4थे महीने के 9वें दिन उस नगर अर्थात यरूशलेम की शहरपनाह तोड़ दी गई है। यहूदा के इस दुख भरे युग का वर्णन हम विलाप गीत नामक पुस्तक में पढ़ते हैं। इसे हम यर्मिया का विलाप गीत भी कहते हैं। 4-6 पदों में हमको बताया गया है कि तब नगर परकोटे में रास्ता बनाया गया और दोनों दीवारों के बीच के फाटक से जो राजा के उद्यान की ओर था, सब योद्धा रात्रि में भाग निकले, कदापि कसदी चारों ओर थे। उन्होंने अराबा का मार्ग लिया, परंतु कसदी सेना ने राजा का पीछा किया और यरीहो के मैदान में उसे जा पकड़ा। तब उसकी सारी सेना तितर बितर हो गई। तब वे राजा को बंदी बनाकर बेबीलोन के राजा के पास रिबला ले आए और उसने उसे दंड की आज्ञा दी। शत्रु नगर में घुस गया। यहूदा के राजा तथा सैनिकों ने भाग निकलने का प्रयास किया, परंतु वे सफल न हो सके। शत्रु ने उसे धर दबोचा। प्रिय मित्र, यर्मिया नबी ने पहले ही से यरूशलेम के पतन के विषय में भविष्यवाणी की थी। लोगों ने उसे अपना शत्रु समझा। उसकी भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर से मन लगाने की अपेक्षा उन्होंने यर्मिया नबी को अपना शत्रु समझा। उसने लोगों को सत्य बात से अवगत करा दिया था, किंतु लोगों ने उससे घृणा की। आज भी लोग सत्य से घृणा करते हैं। वे उन लोगों से भी घृणा करते हैं जो उन्हें सत्य बताते हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होता। प्रिय मित्र, सत्य परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर की ओर से है, हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। सिदकिया राजा ने यर्मिया नबी के वचन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे सत्य कड़वा लगा। उसने अपने मार्ग को नहीं बदला और जब उसने सत्य की प्रतीति ना की तो उसे झूठ पर विश्वास करना पड़ा। झूठे नबियों ने उसे मूर्ख बनाया और इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम हम 7वें पद में पढ़ते हैं, जहां लिखा है, उन्होंने सिदकिया की आंखों के सामने उसके पुत्रों का वध कर दिया तथा उसकी दोनों आंखें फोड़ डाली और उसे कांसे की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन ले गए। मित्र, देखा आपने? आपने परमेश्वर विरोधी अनाज्ञाकारी व्यक्ति का अंत देखा? मेरे मित्र, सिदकिया राजा का जीवन मेरे और आपके लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमें अपने विषय में विचार करने की आवश्यकता है। क्या हम वास्तव में परमेश्वर के साथ हैं? क्या हम अपने द्वारा बनाए ईश्वरों के साथ हैं? उस परमेश्वर के साथ हैं जिसने हमें बनाया है, या हम अपने हाथ के बनाए हुए ईश्वरों परमेश्वरों पर विश्वास करते हैं। स्मरण रखिए, परमेश्वर ने हमें अर्थात मनुष्य को अपने स्वरूप व समानता में बनाया है। सिद्धिकिया ने जीवित व सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर का तिरस्कार किया, परिणाम स्वरूप उसके पुत्रों को उसके सामने मार डाला गया। उसकी स्वयं की दोनों आंखों को लोहे की गर्म शलाखों से फोड़ दिया गया। उसे अंधा करके पीतल की बेड़ियों में जकड़कर बेबीलोन ले जाया गया। मित्रवर, शैतान हमारा मित्र नहीं है, वो धूर्त है, वो हमारा भयंकर शत्रु है। जब हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं करते, हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से अपना ध्यान हटाकर संसार पर और शैतान की बातों पर अपना ध्यान लगाते हैं, तो वह इसी प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करता है। शैतान की मित्रता का अंत ऐसा ही है। हमें उससे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शैतान कभी भी हमारा मित्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर का शत्रु है, और हम अर्थात मनुष्य परमेश्वर की सबसे सुंदर और प्रिय सृष्टि है। तब 8 से 12 पदों में इस प्रकार से लिखा है, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज्यकाल के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन बेबीलोन के राजा का एक कर्मचारी नबूजरदान, जो पहरेदारों का सरदार था, यरूशलेम को आया, और उसने यहोवा के भवन, राजभवन और यरूशलेम के सब घर अर्थात सभी बड़े घर आग से फूंक दिए, और कसदियों की समस्त सेना ने, जो पहरेदारों के सरदार के साथ थी, यरूशलेम के चारों ओर की दीवार को ढा दिया। जो लोग नगर में रह गए तथा भगोड़े जो बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे और बची हुई भीड़, सबको पहरेदारों का सरदार नबूजरदान बंधुआई में ले गया। परंतु पहरेदारों के प्रधान ने देश के कंगालों को छोड़ दिया कि दाख की बारियों की देखभाल और खेती करें। मित्र, 9वें पद में हमने पढ़ा, और उसने यहोवा के भवन, राजभवन और यरूशलेम के सब घर अर्थात सभी बड़े घर आग से फूंक दिए। प्रिय मित्र, यरूशलेम के विद्रोह के कारण नबूकदनेस्सर ने नगर को ऐसी दशा में कर डाला कि जब 70 वर्ष के दासत्व के पश्चात नहमिया नबी यरूशलेम वापस लौटा, तो उस समय भी उसने नगर को दुर्दशा में पड़ा हुआ पाया, अर्थात 70 वर्ष तक नगर दुर्दशा में पड़ा रहा। नबूकदनेस्सर की सेनाओं ने नगर को फूंक दिया और रौंद डाला। इसके विपरीत झूठे नबियों का कहना था कि परमेश्वर नगर को नाश नहीं करेगा, क्योंकि वह परमेश्वर का व उसके लोगों का नगर है। वास्तव में ये झूठे नबी थे। आज भी अनेक प्रचारक इसी प्रकार का प्रचार करते हैं। आज भी लोग इसी प्रकार की शांति भरी बातें कहते हैं, जबकि शांति नहीं है। परमेश्वर की कलीसिया को भी ऐसा ही कहकर धोखा दिया जाता है। प्रचारक कहते हैं कि हम तो चुने हुए और बुलाए हुए हैं, हमसे तो परमेश्वर कुछ नहीं कहेंगे, चाहे कैसा भी जीवन व्यतीत करें। परंतु मेरे मित्र, स्मरण रखिए, परमेश्वर को हमारी आवश्यकता नहीं है, वरन हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, और इसलिए हमें परमेश्वर के नियमों का पालन करना है। परमेश्वर ने जिन्हें बंधुआई में भेजा वह कौन लोग थे? मित्र, वे परमेश्वर की निज प्रजा थे, वे कोई गैर लोग नहीं थे, वो अपने लोग थे, वो परमेश्वर के थे, उसके अपने प्रियजन थे, और ये हमारे लिए गंभीर शिक्षा का विषय है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है, परमेश्वर का यही सिद्धांत है। आज्ञा उल्लंघन दंड ही लाता है, परमेश्वर का विरोधी अवश्य दंड पाएगा। हमें इससे शिक्षा लेने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर के विरोधी ना बने, वरन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, ताकि हम परमेश्वर की दया, करुणा और उसकी आशीषों का आनंद ले सकें। 13 से 17 पदों में हम मंदिर के लूटे जाने के विषय में पढ़ते हैं, और हम पढ़ेंगे कि मंदिर को किस प्रकार से उन्होंने फूंक दिया। मंदिर को फूंकने से पहले उन्होंने उसकी सभी बहुमूल्य वस्तुओं को निकाल लिया और वह सारी धन संपत्ति को बेबीलोन ले गए। यरूशलेम कंगालों का नगर बनकर रह गया। यरूशलेम लूट लिया गया, फूंक दिया गया तथा मलबे का ढेर बनाकर छोड़ दिया गया। मित्र, यदि यरूशलेम के विनाश की कथा आप पूछें तो ये नगर लगभग 27 बार नष्ट हुआ है। जी हां, 27 बार। हर बार ये नगर मलबे के ढेर पर पुनः निर्मित किया गया है। वह पर्वत जिस पर यरूशलेम नगर पाया जाता है वह मलबे पर बार बार बनाया गया नगर है। वास्तविक नगर तो कई फीट नीचे दब चुका है। अनेक लोग विशेषकर पर्यटन एजेंट कहते हैं कि यरूशलेम चलिए, वहां चलिए, चलिए फिरिए जहां प्रभु यीशु मसीह चला फिरा करते थे। मित्रवर, जहां प्रभु यीशु मसीह चलते फिरते थे आप वहां कदाचित नहीं चल फिर सकते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि जिस नगर में प्रभु यीशु मसीह चला फिरा करते थे वो नगर तो टनों मलबे के नीचे दब चुका है। आपको वहां पहुंचने के लिए कम से कम 20 से 45 फीट गहराई तक खुदाई करनी होगी, तब कहीं जाकर आपका पांव सही स्थान पर पड़ सकेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार यरूशलेम अनेक बार नष्ट हो चुका है और कारण है यहूदा का पाप तथा परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध विद्रोह, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। तब 18 से 21 पदों में हम पढ़ते हैं, तब पहरेदारों के प्रधान ने सराया महायाजक तथा दूसरे याजक सपनिया और भवन के 3 अधिकारियों को पकड़ लिया। तब उसने नगर के 1 अधिकारी को जो सैनिकों पर था तथा राजा के 5 सलाहकारों को जो नगर में थे तथा सेना के सेनानायक के सचिव जो देश की प्रजा की गिनती रखता था और देश के 60 नागरिकों को जो नगर में थे पकड़ लिया। पहरेदारों का सरदार नबूजरदान इन्हें बंदी बनाकर बेबीलोन के राजा के पास रिबला में लाया। तब बेबीलोन के राजा ने हमाद देश के रिबला में उन्हें ऐसा मारा कि वे मर गए और इस प्रकार यहूदियों को अपने देश से निष्कासित कर बंधुआई में ले जाया गया। प्रिय मित्र, बेबीलोन के सेनाधिकारी नबूजरदान ने यहूदा के महायाजक, याजक तथा भवन के अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा। उसने राजा के सलाहकारों, सेना के सेनानायक के सचिव को भी बंदी बना लिया और नबूकदनेस्सर के पास ले गया। वहां उसने उन सबको मौत के घाट उतार दिया और इस प्रकार यहूदा बेबीलोन की गुलामी में, उसके दासत्व में चला गया। और इसका कारण था यहूदा का पाप और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर को त्यागना। उन्होंने परमेश्वर को त्यागा तो परमेश्वर ने भी उन्हें त्याग दिया। मेरे मित्र, मैं और आप भी इसी प्रकार पाप से खेलते रहते हैं, जिस प्रकार से यहूदा के लोग, यहूदा के राजा पाप से खेलते रहे। परमेश्वर के अनुग्रह और सहनशीलता को साधारण बात समझते रहे, हम भी ऐसा ही करते हैं। तब अचानक हम स्वयं को शैतान के चंगुल में फंसा हुआ पाते हैं और वास्तव में हम अपने हठीले और निर्बुद्धि मन के कारण शैतान के दास बन जाते हैं। अपनी लापरवाही के कारण हम शैतान के दास बन जाते हैं। हम उसी खेल में फंस जाते हैं जिसमें हम आनंद ले रहे थे और शैतान हमारे ऊपर क्लेश लाता है, पतन लाता है, तनाव वह दुख लाता है, यहां तक कि वह हम पर विनाश लाता है। अंततः या तो हम आत्महत्या कर लेते हैं या समय को मृतकों के समान काटते हैं, अर्थात चलती फिरती लाश बन जाते हैं। हमें इस अध्याय से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। तो 22वें पद में हम पढ़ते हैं, जो लोग यहूदा देश में रह गए थे और जिन्हें बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने छोड़ दिया था, उन पर उसने सपनिया के पौत्र और यही काम के पुत्र गदलिया को नियुक्त किया। तो 24वें पद में हम पढ़ते हैं, गदलिया ने उनसे तथा उनके दलों से शपथ खाई और कहा, कसदियों के कर्मचारियों से भयभीत मत हो, देश में बसे रहो तथा बेबीलोन के राजा की सेवा करो, तब तुम्हारा भला होगा। मित्र, नबूकदनेस्सर ने गदलिया को उन पर नियुक्त कर दिया कि वह बचे हुए यहूदियों की देखभाल करे, परंतु सातवें महीने में उन्होंने गदलिया को भी मार डाला। यहूदा वासियों को चाहिए था कि वह गदलिया तथा यर्मिया नबी की बात सुनते। इसके बदले उन्होंने गदलिया राज्यपाल की हत्या कर दी। इसके फलस्वरूप शेष यहूदियों को मिस्र भाग जाना पड़ा। यर्मिया को भी इस समूह के साथ मिस्र निर्वासित होना पड़ा। वो भी मिस्र चला गया, यद्यपि वह वहां जाने का इच्छुक नहीं था। मित्रवर, यह ऐसा समय था जबकि यहूदा में ना तो कोई परमेश्वर का याजक शेष रह गया था और ना कोई नबी। ये वास्तव में बड़ी दयनीय दशा थी। 27वें पद से हम पढ़ते हैं, यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 37वें वर्ष के 12वें महीने के 27वें दिन ऐसा हुआ कि बेबीलोन के राजा अबील मरोदाक जिस वर्ष राजा बना, उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदी गृह से मुक्त कर दिया और उसने उससे सहानुभूति के वचन कहे तथा उसका सिंहासन उन राजाओं के सिंहासन से ऊंचा किया जो उसके साथ बेबीलोन में थे। और यहोयाकीन ने अपने बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए तथा जीवन पर्यंत राजा के सम्मुख नित्य भोजन करता रहा तथा दैनिक खर्च के लिए उसे राजा के द्वारा नियमित रूप से जीवन भर भत्ता मिलता रहा। मित्रवर, यहां पर हम देखते हैं कि यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से मुक्ति मिल गई है। बेबीलोन के राजा अबील मरोदाक ने उसके साथ अच्छा व्यवहार करना आरंभ कर दिया है। अबील मरोदाक के नाम का अर्थ है मार्दूक का आदमी, अर्थात मार्दूक एक देवता का नाम है। इसी के नाम पर इस राजा का नाम है। सो हम देख रहे हैं कि निर्वासन का दंड इसराइल प्रजा तथा राजा दाऊद की वंशावली को नाश नहीं करेगा। यद्यपि बेबीलोन के राजा के दरबार में और भी राजा थे जिन्हें उसने बंदी बनाकर रखा था, परंतु उसने यहोयाकीन को दूसरों से अधिक सम्मान दिया। मित्रवर, दाऊद के वंश का यह दीपक धुंधला तो अवश्य हो गया है, ये वृद्ध अवस्था में है, परंतु परमेश्वर दाऊद राजा के साथ की गई अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य पूर्ण करेंगे। और इसलिए 27वें पद से हम देखते हैं कि यहूदा के राजा पर परमेश्वर की दया और करुणा हमको दिखाई देती है। वो उनके कार्यों के कारण नहीं, वरन दाऊद राजा को दी गई अपनी प्रतिज्ञा के कारण परमेश्वर उनकी चिंता करते हैं। मेरे मित्र, आज भी परमेश्वर पिताजी अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर दया करते हैं। संसार चाहे परमेश्वर का विरोधी बन गया है, परमेश्वर के लोग भी परमेश्वर की ओर नहीं है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, फिर भी परमेश्वर की दया मानव जाति पर बनी हुई है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के कारण मानव जाति पर दया करते हैं, अपने लोगों पर दया करते हैं और चाहते हैं कि मनुष्य अपने पापों से मन फिराए और परमेश्वर की आराधना उपासना करे और परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करने के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करे, क्योंकि परमेश्वर किसी भी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होते। यदि आज आप अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर आते हैं, परमेश्वर को अपने सृष्टिकर्ता, अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो मेरे मित्र, परमेश्वर पिताजी आपको इसी पल ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, वह आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। स्वयंनी वचनों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे। आमीन।
प्रभु जी। तेरी प्रभु जी।
प्रिय श्रोताओ, अभी आपने हमारा ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन सुना। निश्चय ही हमारा ये बाइबल अध्ययन आपके जीवन के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। यदि आप परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में जानना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्य वचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, एक बार हम फिर से बता दें कि आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi.ttb@radiovv.org, hindi.ttb@radiovv.org। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।